आप हैं SBS हिंदी के साथ।
एस्ट्राजेनेका ब्लड क्लॉट्स मामले के बाद ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन को लेकर विकल्पों की कोशिशें तेज। भारत के झारखंड में नक्सली हमले के बाद से अगवा CRPF का जवान हुआ रिहा, और भारत में बढ़ते हुए कोरोना मामलों को देखते हुए अब बेंगलुरु में भी लगा नाइट कर्फ्यू। अब खबरें विस्तार से। फेडरल सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया है कि COVID-19 वैक्सीन रोल आउट के बारे में सलाह लेने के बाद अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 50 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद बोलते हुए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 170 मिलियन वैक्सीन खुराक को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न दवा कंपनियों के साथ 4 समझौते किए हैं। इसके साथ ही साल के अंत तक 20 मिलियन अतिरिक्त फाइजर शॉट्स की भी व्यवस्था की जा रही है। स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि एस्ट्राजेनेका खुराक को 50 साल से कम उम्र के लोगों को न देने की सलाह ब्लड क्लॉट्स के बहुत हल्के जोखिम को देखते हुए ली गई है।
So there was no instruction not to take that vaccine. There is an acknowledgement of the risk that is there. But as is the case always with these matters, these are decisions for Australians. And certainly for those who are over 50, there is a strong encouragement to be taking this AstraZeneca vaccine, which we discussed today, to ensure that we can continue down the path of the vaccination rollout.
इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने वैक्सीन रोल आउट की गति का बचाव किया, जिसकी रोज की रिकॉर्डेड संख्या 81,000 से अधिक खुराक की है, जिसमें अब तक 1 मिलियन से ज्यादा टीके लग भी चुके हैं।
In terms of the continuity of the program, I think it is very important to emphasize that the basic settings as we progress through 1A and 1B and even phase 2A are largely unchanged. In 1A, we will have the aged care residents, we will have the frontline workers and the quarantine workers. Those programs in the case of the quarantine and the frontline health workers are largely completed.
आपको बता दें कि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 5.5% ऑस्ट्रेलियाई आबादी को पहला वैक्सीन शॉट लग चुका है। न्यू साउथ वेल्स ने कुछ समय तक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के रोल आउट को रोका था, लेकिन अब नई स्वास्थ्य सलाह के बाद इसे एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। प्रीमियर ग्लेडिस बेरेज़िकलन का कहना है कि राष्ट्रीय कैबिनेट ने सहमति व्यक्त की है कि ये वैक्सीन 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अभी भी सुरक्षित है।
Of course, there is that rare condition which happens in a very infrequently, and the risk is there, but it's a very low risk. And the best advice we have is that people over the age of 50 should feel confident in getting the AstraZeneca vaccine. And those who are under 50 can assess the risk themselves and make that decision. So as you recall, I just turned 50 last year and did get the AstraZeneca vaccine. I intend to get the second dose.
इस बीच साउथ ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना है कि ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या राज्य अभी भी क्रिसमस तक सभी को टीका लगाने के अपने पुराने लक्ष्य को पूरा कर सकता है।
Look, I think we need to just pause and get all of the information in. Now, the Commonwealth are confident that they're going to be able to secure more of the Pfizer vaccine. And in fact, the Prime Minister has already announced a very significant increase in the Pfizer vaccine, which will be coming into the country this year. But there will be other vaccines that are being considered and that could come online.
वैक्सीन मामले पर लेबर लीडर एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि सरकार को पहले ही ज्यादा वैक्सीन सुरक्षित करनी चाहिए थी।
We knew that there can be issues with the rollout of a vaccine such as this, which is why international best practice would have had us do deals over Moderna, over Johnson and Johnson. In the UK, with the changes that have been made to AstraZeneca, they can just be replaced. Here in Australia, we're not in that position, which is why there is such uncertainty.
इस बीच ग्रीन्स पार्टी ने भी वैक्सीन रोल आउट पर फेडरल सरकार को घेरा।
We shouldn't be waiting at the end of a queue, hoping that a big corporation that's making the right kind of vaccine will deliver us enough doses at the right time. We should be able to make all the kinds of vaccines that we need here in Australia.
यौन भेदभाव आयुक्त केट जेनकिंस का कहना है कि कार्यस्थल उत्पीड़न में उनकी रिपोर्ट पर फेडरल सरकार की प्रतिक्रिया में उनकी सबसे जरूरी सिफारिशों में से एक की अनदेखी की गई है। सरकार ने कल रिस्पेक्ट एट वर्क रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की, जिसमें नेताओं और न्यायाधीशों को भी अब ऑस्ट्रेलियाई जनता के समान कानूनों के अधीन करने का वादा किया गया है। साथ ही साथ लोगों को यौन उत्पीड़न के लिए बर्खास्त करना आसान बना दिया गया है। आयुक्त केट जेनकिंस का कहना है कि वह सरकार की प्रतिक्रिया से खुश हैं, लेकिन उन्होंने नाइन नेटवर्क को बताया कि उनकी सिफारिशों में से एक, जिसमें नियोक्ताओं को कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को खत्म करने के लिए लगातार कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाना था, उसे मंजूर नहीं किया गया है।
At the moment, that act, the laws on sexual harassment, really only come to life if a victim complains. And that leaves a huge burden on individuals who have been harassed. I think that needs to change. The government said they'll continue to assess that, and I will continue to raise that with them.
अब खबरें भारत से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले के बाद अगवा किए गए सीआरपीएफ जवान को रिहा कर दिया गया है। सैकड़ों ग्रामीणों के सामने सीआरपीएफ के जवान को रिहा किया गया। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 22 जवानों की मौत हो गई थी।
मैं सुबह यहाँ से वहाँ निकला था जहाँ पर जवान को रखा गया था। वहाँ जाने के बाद जवान से मुलाकात कराया माओवादियों द्वारा। जवान स्थिति अच्छी है, वो स्वस्थ है, परंतु मानसिक रूप से वो परेशान है, क्योंकि इतने दिनों तक नक्सलियों के बीच में रहना काफ़ी बड़ा वक्त होता है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता जिस दिन मुठभेड़ हुआ उस दिन वो भटक चुका था, भटक कर दूसरी तरफ निकल गया था वो, और दूसरे दिन वो नक्सलियों के हाथ लगा था। और माओवादियों का स्पष्ट ये कहना था कि वे मानवता के नाते उसे छोड़ रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद सीधे वो उनका ये सरकार से भी माओवादियों ने अपील की कि वो सीधे जवान को सबसे पहले कश्मीर उसे घर भेजे, उनके परिवार से मिलने का मौका दे।
इस मौके पर सीआरपीएफ जवान की पत्नी मीनू ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन है।
बहुत 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 ही गंदे दिन थे, वो ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे, बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच।
देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार तेज़ी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर और मुंबई के बाद अब कर्नाटक के बेंगलुरु में भी शनिवार से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को काबू करने के लिए राज्यों से एक नए प्रतिबंध लागू करने का आग्रह किया था, जिसके बाद ये घोषणा की गई।
साथियों, आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट है और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। पहले से एक अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है।
भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ रहे हैं, उसने भारत सरकार को चिंताओं में घेर लिया है। सरकार हर संभव कोशिशें कर रही है कि बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जाए। इसी कोशिश में टीकाकरण के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से टीका लगवाने की बात कही और इसी पहल को टीका उत्सव के रूप में मनाने का आग्रह किया।
मेरा आप सभी से आग्रह होगा, हाई फोकस्ड रिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है, और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है, क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें, हम इन चार दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा।
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी शुक्रवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.90 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 76 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल सीजन 14 शुरू हो रहा है और इसका पहला मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण बहुत ही खास होने जा रहा है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी तरफ से टूर्नामेंट को रोमांचक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि एक महीने तक चलने वाले टूर्नामेंट के लिए दुनिया के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटरों को मिलाकर कुल 100 दिग्गजों की टीम बनाई गई है। इसमें गावस्कर, गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, इरफान पठान से लेकर ब्रायन लारा तक शामिल हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब एक गैर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में इतने बड़े एक्सपर्ट पैनल को शामिल किया जा रहा है। पिछले दिनों चोटिल होकर आईपीएल 2021 से बाहर हुए दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधे की सर्जरी सफल रही और इसकी तस्वीरें अय्यर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द ही सक्रिय क्रिकेट में वापसी करेंगे। आपको बता दें कि अय्यर इंग्लैंड के सीरीज के दौरान फील्डिंग करते हुए बुरी तरह चोटिल हो गए थे और उनका कंधा अपनी जगह से खिसक गया था। इसी चोट के चलते श्रेयस आईपीएल टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए थे। पिछले दिनों कोविड-19 पॉजिटिव हुए पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अस्पताल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि सचिन में 27 मार्च को हल्के कोविड-19 के लक्षण पाए गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें एहतियातन अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अब राहत की खबर यह है कि सचिन के अस्पताल में करीब एक हफ्ता गुजारने के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई है। सचिन ने अपने फैंस को इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी कि शनिवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में हल्की बारिश की संभावना है, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहां कल आसमान में बादल रहेंगे। यहां के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सिडनी की, जहां बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, यहाँ का तापमान रहेगा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।